श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 29।
भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति।
मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तात्पर्य, माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवद गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ये कष्ट हमेशा हमको सताते रहते हैं और हमारा पूरा जीवन हर क्षण इन दुखों की निवृत्ति करने के संघर्ष में बीतता जा रहा है। इस समय बहुत ठंड है, जब मैं क्लास दे रहा हूँ तो हम प्रयास करते हैं कुछ गर्म वस्त्र धारण कर लेते हैं, जब गर्मी होती है तो पंखा चला लेते हैं। तो बात बहुत साधारण सी है, लेकिन अगर आप देखें तो सुबह से शाम तक हम केवल एक संघर्षमय जीवन बिता रहे हैं जिसमें हम इन त्रितापों का निवारण करने में लगे हैं, लेकिन सारे प्रयास करने के बाद भी ये ताप हमारे जीवन से जाते नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ही इस बात को समझ पाएगा। तो प्रभुपाद जी यहां पे समझा रहे हैं तात्पर्य में, शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं, यानी कि अपने कर्मों के भोक्ता हम नहीं हैं। हमारे कर्मों से भगवान कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए और इसका अर्थ है कि वो कर्म भगवान की भक्ति से होने, भक्ति से युक्त होने चाहिए, क्योंकि भक्ति के कर्मों से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होंगे तो जीवात्मा अपने आप शांति और सुख को प्राप्त करेगा। जैसे हम अपने मुख पे श्रृंगार करते हैं तो मुख का जो रिफ्लेक्शन है, जो प्रतिबिंब शीशे में दिखाई पड़ता है, उसमें अपने आप श्रृंगार हो जाता है, लेकिन प्रतिबिंब को अलग से श्रृंगार करने का प्रयास निरर्थक है। तो इस बात को समझना चाहिए इस उदाहरण से। मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। कोई व्यक्ति कह सकता है कि जब भगवान स्वामी हैं और सब कुछ उनका है, वही सबको दे रहे हैं, तो उन्हें देने की क्या जरूरत है। आप देखिए, जीवन में हम किसी को कुछ देते हैं संबंध देख करके। जो व्यक्ति किसी को कुछ नहीं दे, क्या उसे कुछ देना चाहिए? तो देना तो उस व्यक्ति को चाहिए जो सबको दे रहा हो, क्योंकि वो बहुत उदार हृदय का व्यक्ति है। तो भगवान को जब हम देते हैं तो इससे भगवान का लाभ नहीं होता है, इससे हमारा स्वयं का लाभ होता है। और लाभ क्या है? शांति को प्राप्त करते हैं। लेकिन लोगों को ये बात पता नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान हैं। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद भगवान को तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम कहा गया है। तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम का अर्थ है कि इस जगत में बहुत सारे ईश्वर हैं, यथा इंद्र, चंद्र, शिव, ब्रह्मा इत्यादि, लेकिन उनके भी ईश्वर हैं भगवान कृष्ण। ईश्वरः परम कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। माया के वशीभूत होकर हमारे सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। ये हमारी मुख्य बीमारी है कि इस जगत में जो भी वस्तु हम देखते हैं उसको भोग दृष्टि से देखते हैं। ये प्रभुत्व जताने का अर्थ है, हम सोचते हैं कि इसको मैं भोगूंगा। और इसकी चर्चा हमने पहले भी करी है कि इस बीमारी का इलाज है यज्ञ की प्रक्रिया, यानी पहले इसको भगवान को समर्पित करना है और उसके बाद ही मैं इसका उपयोग करूंगा। भगवान प्रकृति यानी माया के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। आप लोग कहेंगे कि हम लोग प्रकृति की कठोर अनुशासन में कैसे हैं, जैसे जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये एक अनुशासन है प्रकृति का जिसको हम लोग टाल नहीं सकते हैं किसी भी भौतिक व्यवस्थापन के द्वारा, या आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक कष्ट, इनका हम निर्मूलन नहीं कर सकते हैं। कुछ हद तक इनको काटने का प्रयास करेंगे लेकिन पूरा जड़ से हम इसको उन्मूलन नहीं कर सकते हैं। तो यहां प्रभुपाद बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, व्यष्टि का मतलब होता है व्यक्तिगत और समष्टि का मतलब होता है सामाजिक रूप से। अगर हम दो लोगों को इकट्ठा करते हैं जो कि शांत बहुत शांत हैं, तो दोनों मिलकर भी शांत रहेंगे और अकेले अकेले भी शांत रहते हैं। ऐसे ही हम 10, 100, 1000 या 1,00,000 लोगों को इकट्ठा करते हैं जो व्यक्तिगत रूप से बहुत शांत हैं, तो आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम दो लोगों के लेके आते हैं और दोनों लोग अशांत हैं तो झगड़ा करेंगे। तो अगर हम समाज में शांति चाहते हैं तो केवल शांति शांति करने से शांति नहीं हो जाएगी, अपितु सूत्र को धारण करना पड़ेगा कि हम सभी के जीवन का केंद्र कृष्ण को होना चाहिए और कृष्ण हैं, हमें बस स्वीकार करना है और उनकी सेवा में लगना है और तब हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप भूखे हैं और पेट को ना दें तो किसी भी अंग को रस प्राप्त नहीं होगा, किसी भी अंग को शक्ति प्राप्त नहीं होगी। और अगर हम पेट को खाना दे देते हैं तो सारे अंग अपने आप शक्तिमय हो जाएंगे, रसमय हो जाएंगे। कृष्ण भावना मृत का यही अर्थ है। क्या अर्थ है? कि भगवान की प्रसन्नता के लिए सारी कर्मों को समर्पित किया जाए। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, अकेले भगवान ही सभी की इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं, सभी की आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहे हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत बहुत सिंपल है, मैं कृष्ण का अंश हूँ, कृष्ण परमेश्वर है, वो मेरे नित्य स्वामी हैं और मुझे उनकी सेवा कर रही हैं और यही मेरा एकमात्र कर्तव्य है। अन्यों की सेवाओं की वजह से मैं भगवान की सेवा को बाधित नहीं करूंगा। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। मतलब क्या करना है इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना, यानी कि भगवान ही भोगता है, पहले वो वस्तु का भोग करेंगे और उनका प्रसाद मैं ग्रहण करूंगा। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। यानी ज्ञान योग के माध्यम से व्यक्ति जानने का प्रयास करता है कि भगवान है कौन, और भक्ति में हम सीधे भगवान की सेवा करने में लगते हैं, तो इसलिए वो दिव्य ज्ञान से अभिन्न है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। जब तक व्यक्ति भगवान कृष्ण को ठीक प्रकार से नहीं समझेगा, तब तक वो कृष्ण भावनामृत में कर्म नहीं कर सकता। वो अगर सोचता रहेगा कि भगवान कृष्ण एक समान व्यक्ति हैं, तो फिर उनकी सेवा करने का या उनकी शाश्वत सेवा का ज्ञान उसके हृदय में स्थिर नहीं हो पाएगा। शुद्ध जीव भगवान के अंश के रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। इसको चर्चा हम पहले कर चुके हैं। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया देश तार संसार दुख। भगवान को भूलने के कारण अनादि काल से इस जगत में है और माया के द्वारा दुख को प्राप्त कर रहे हैं। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है। किंतु कृष्ण भावनामृत इस पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। बहुत सुंदर बात है कि देखिए इस समय हमारा भौतिक शरीर है और इसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हमें कर्म करना होगा, लेकिन अगर वो कर्म कृष्ण से संबंधित हो तो ये हमारी चेतना का, हमारी जो दिव्य चेतना है जो कि इसमें सुप्त है, उसका विकास करने के लिए परम लाभकारी होगा। तो हमें अपने कार्यों को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है, केवल उन्हें कृष्ण को समर्पित करने सीखना हमको पड़ेगा। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है, भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। ये भी एक एक लाइन कितनी महत्वपूर्ण है। जितना व्यक्ति सत्वगुणी होगा और अंततोगत्वा दिव्य स्थिति पर रहेगा, उतना ही वह अपनी पहचान पदार्थ से अधिक कम करेगा और उतना ही वो ये अनुभव करेगा कि वह शरीर नहीं है, वह आत्मा है। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। और जो कोई उपर्युक्त काम इच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है, वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। यानी प्रभुपाद कह रहे हैं इस बात को कि जो व्यक्ति भक्ति का अभ्यास जितनी दृढ़ता से करता है, जितनी मात्रा में वो सभी कर्मों को भगवान कृष्ण को ही समर्पित कर रहे, जितनी मात्रा में वो अपने सारे कर्मों को कृष्ण को समर्पित करता है, उतनी ही मात्रा में उसके हृदय का ज्ञान नष्ट हो जाता है, काम क्रोध नष्ट हो जाता है और वो भगवान की प्रेमा भक्ति में स्थित हो पाता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इसमें अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि के अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है, यही जीवन की परम सिद्धि है। इंपॉर्टेंट बात है कि भक्ति योग में हमने चर्चा किया था इससे पहले वाले श्लोक में कि भक्ति योग में सीधे हम भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं और उस भगवान के ध्यान से नामोच्चारण कथा श्रवण हम भगवान के संपर्क में आते हैं और अपने आप ही हमारे हृदय की अज्ञान जो हृदय का अज्ञान है वो नष्ट हो जाता है। और जैसे 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 या जितनी मात्रा में हमारा ज्ञान नष्ट हो जाता है, हम पूर्ण शांति को अपने आप प्राप्त कर लेते हैं। अलग से अष्टांग योग करने की आवश्यकता आध्यात्मिक जीवन के अनुशीलन के लिए एक भक्त को नहीं होती है। तो इस श्लोक में भगवान ने भक्ति को इंट्रोड्यूस किया है और इसकी विशद व्याख्या वो सातवें अध्याय से करना शुरू करेंगे, जिसके बारे में हम चर्चा तब करेंगे जब हम सातवें अध्याय को पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।